కాంతికం త విక్రీతేపి నిష్కృతే మన పునర్ధావతి చేద సత్పతే. తత్కర్మ నిర్హారమ భీప్సితామ హరే గుణానువాద ఖలు సత్వ భావన शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की न नहीं एकांतिकम पूरी तरह स्वच्छ किया हुआ तत् हृदय ही क्योंकि कृते अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न अपि यद्यपि निष्कृते प्रायश्चित मन मन पुनः फिर धावती दौड़ता है चेत यदि असत्पथे भौतिक कार्यों के मार्ग पर कर्म निर्हारम भौतिक कर्मों के अभीप्सताम उनके लिए जो गंभीरता पूर्वक चाहते हैं हरे है भगवान का गुण अनुवाद महिमा का निरंतर कीर्तन खलु निसंदेह सत्व भावना वास्तव में किसी के जीवन को शुद्ध करने वाला अनुवाद. धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त है क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है. फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत की जाती है क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है. तात्पर्य इस श्लोक के कथन को पुष्टि पहले ही भागवत में हो चुकी है. श्रोताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विधि अंतस्तो ही भद्राणी विधुनोति सुहस्रताम. भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, उसे भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं. जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं पुण्यप्रद है. यह तो भगवान की विशेष कृपा होती है कि जो ही वे यह जान जाते हैं कि कोई उनके नाम यश तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं. इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है. पुण्य श्रवण कीर्तन भक्ति का द्योतक है. यदि कोई भगवान के नाम लीलाओं तथा गुणों को न भी समझता हो तो वह मात्र उनके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है. ऐसी शुद्ध सत्व भावन कहलाती है. मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए. जब तक मनुष्य इस शरीर में रहता है वह अशुद्ध समझा जाता है. ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर सकता. यद्यपि हर कोई उसकी खोज में रहता है इसलिए भागवत में कहा गया है तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध्येत. आध्यात्मिक पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपना जीवन शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए. भगवान के नाम यश तथा गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या वह अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है जिससे हर एक सुखी बन सकता है. अतएव हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है यह विधि ग्रहण करनी चाहिए. अन्य विधियां यथा कर्म ज्ञान तथा योग हृदय को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बना सकती। नमोम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। तो परम सौभाग्य है श्री राधा राज बिहारी जी के चरणों में बैठकर उनके नाम की महिमा हम सब यहां पर सुन रहे हैं। प्रसंग से आप सब परिचित हैं, यजामिल प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। बहुत सुंदर गत श्लोकों में नाम की महिमा का वर्णन हुआ। कोई व्यक्ति कितना भी पाप करता है, यदि भगवान का नाम ग्रहण कर लेता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में बता रहे हैं, हरेर नाम संकीर्तनम एव पाप निर्मूलनम कारणम। भगवान के नाम का संकीर्तन ही पाप को नष्ट कर सकता है। अन्य तप आदि भी, अन्य जो तप इत्यादि जो कार्य है वह व्यक्ति को इतना पवित्र नहीं कर सकते जितना भगवान का नाम और भगवान की भक्ति। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, नैकांतिकम तद्विकृते पि निष्कृते। निष्कृते अर्थात प्रायश्चित, कहते हैं प्रायश्चित कृते अपि, यदि कोई प्रायश्चित कृते कर भी लेता है, अपि का अर्थ होता है भी, यदि कोई कितना भी बड़ा प्रायश्चित कर ले परंतु उस प्रायश्चित से मनः पुनर्धावति, उसका मन पुनः फिर से असत मार्ग पर चला जाएगा। क्योंकि प्रायश्चित जो विधि है ये जीव को पवित्र करने के लिए पूर्ण विधि नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रायश्चित के द्वारा जीव पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता है। इस संसार में हमने देखा है जो लोग प्रायश्चित करते हैं, छठे स्कंद के प्रारंभ में भी महाराज परीक्षित कहते हैं, कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मनीय कुंजर शोचवत। ये प्रायश्चित जो है हाथी के स्नान के समान, हाथी जो होता है नदी में स्नान करता है घंटों भर, दो तीन घंटे के लिए हाथी जल में स्नान करता है, लेकिन जैसे ही उस जल से बाहर निकलता है बाहर की मट्टी को अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। जब मट्टी के द्वारा अपने शरीर को बिगाड़ना ही था तो तीन चार घंटे तक नदी में स्नान करने का क्या लाभ। ठीक उसी प्रकार ये प्रायश्चित की विधि पवित्र करने वाली है, क्योंकि न चेति हेवा पचितिम यथामंस कृतस्य कुरियान मन उक्त पाणी भी ध्रुवम सवे प्रेत्य नरकानुपेति यह कीर्तिता भवत स्मिग्न यातना। सुखदेव जी ने कहा था कि प्रायश्चित के द्वारा व्यक्ति नरक में जाने से बच सकता है, अपने पापों से मुक्त हो सकता है, लेकिन वह प्रायश्चित पूर्ण रूप से होना चाहिए। लेकिन आज संसार में कुछ लोग प्रायश्चित करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाते। हम देखते हैं कुछ लोग पवित्र होने के लिए प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, हाथ में जल लेकर संकल्प कर लेते हैं कि अब हम मुंबई जाकर सिगरेट नहीं पिएंगे, अब हम मुंबई जाकर शराब नहीं पिएंगे, चाय कॉफी नहीं पिएंगे, प्रायश्चित कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वापस अपने अपने घर पर लौटते हैं, कुछ दिन के बाद वही काम वही पाप शुरू कर देते हैं। कुछ लोग संकल्प लेते हैं कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, फेंक देते हैं, एक दिन नहीं पीते हैं, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, दस दिन, एक महीना, और फिर ऐसा दिन आता है कि एक महीने में जो पाप नहीं किया था वो एक दिन में कर लेता है। अतः ये प्रायश्चित की विधि जो है अपूर्ण है। इस प्रायश्चित की विधि के द्वारा न एकांतिकम, व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता है प्रायश्चित की विधि के द्वारा। यदि व्यक्ति को अपने कर्मों से, अपने पापों से पूर्ण रूप से शुद्ध होना है, ततः माने यदि कर्म निराहारम अभीप्सिताम, जो अपने कर्म को नष्ट करने की इच्छा रखते हैं, अभीप्सिताम माने इच्छा रखने वाले, जो लोग चाहते हैं कि हम हमारे सारे पापों से मुक्त हो जाएं, हमारे हृदय में पाप है उससे भी हम मुक्त हो जाएं, और पाप करने की जो वृत्ति है, वासना है, जो इच्छा है मुझसे भी मुक्त हो जाए, तो बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं कि तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम, जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने पापों से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं हरेर गुणानुवाद, उसे हरि का गुणानुवाद करना चाहिए, भगवान के नाम का या भगवान की लीला का कीर्तन करना चाहिए। हरि का गुणानुवाद करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और पाप से ही नहीं, पाप करने की वासना, पाप करने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। और अंत में कहते हैं खलु सत्व भावन, खलु माने निश्चित ही वह व्यक्ति ही सत्व भावन, उनका चित जो है पवित्र हो जाएगा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, भगवान का गुणानुवाद करेगा, भगवत कथा का श्रवण करेगा। तो भगवत कथा का श्रवण करने वाले व्यक्ति का हृदय चित पवित्र हो जाता है, और भगवत नाम और भगवत कथा को छोड़कर अन्य कोई भी उपाय कर लेता है उसका हृदय उतना पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए आगे सुखदेव जी ने कहा था न तथा यज्ञवान राजन पुयत तप आदि भी तथा कृष्णार्पित प्राण तत्त पुरुष निषेवया। हे राजन, इस संसार में है जप तप आदि से व्यक्ति उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना भगवान की सेवा या भगवान कृष्ण की भक्ति करने से शुद्ध हो सकता, क्योंकि केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंती कार्तियन निहारम इव भास्कर। भगवान का नाम भास्कर के समान, सूर्य के समान है। ठंडी की ऋतु में हम देखते हैं कोहरे जम जाते हैं, धुम्मस फोग जम जाती है, और उस फोग में हमसे दो तीन फुट दूर खड़ा रहने वाला आदमी भी नहीं दिखता है। और उस कोहरे को, उस धुम्मस को दूर करने के लिए यदि कोई कितना भी प्रयास करे, कितनी भी लाइट जलाए, दिया जलाए, या उस धुम्मस को गाली देने लगे, या बंदूक लेकर खड़ा रह जाए, कितना भी प्रयास करे, उस धुम्मस को कोई मिटा नहीं सकता है। उस कोहरे को, उस धुम्मस को मात्र भगवान भास्कर ही मिटा सकते हैं। वैसे हमारे हृदय में जो पाप है उसको मिटाने के लिए कितना भी प्रयास करें, परंतु वह पाप मात्र भगवान के नाम से और भगवान के गुणानुवाद से ही मिट सकते हैं। और वक्त तो कोहरे को मिटाने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं, सूर्य की एक किरण काफी है, सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश काफी है। वैसे पाप को मिटाने के लिए भगवान के नाम की आवश्यकता नहीं, भगवान के नाम का आभास ही, नामाभास ही पाप को मिटा देता है। पाप को मिटाने के लिए नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम लेने की इच्छा जिस दिन भक्त के हृदय में हो जाती है उस दिन ही उसके हृदय से सारे पाप निकल जाते हैं, इच्छा मात्र से। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि संसार में कुछ लोग अपने पापों को दूर करने के लिए, पापों को मिटाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, ये ठीक नहीं। भगवान का के नाम लेने का उद्देश्य भगवत प्रेम होना चाहिए, कृष्ण प्रेम होना चाहिए। पाप को दूर करने के लिए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, ये तो वैसा ही होगा कि आप किसी के घर पर जाओ, और आजकल लोग कुत्ते पालते हैं ना, परंतु किसी के घर पे सिंह को पाल के रखा है, सिंह को पाल कर रखा है, और हम लोग उनके घर पर जाकर कहें कि आपके घर पे सिंह है, अपने घर पर सिंह को क्यों रखा है, तो आदमी जवाब दे, घर पर चूहे बहुत हो गए थे ना, इसलिए सिंह को बांध के रखा है। तो चूहे को मारने के लिए सिंह की जरूरत नहीं, बिल्ली काफी है। वैसे पाप को मिटाने के लिए भगवान के नाम की जरूरत नहीं, नामाभास काफी है, नाम लेने की इच्छा ही काफी। और जब भगवान का नाम ले लिया जाए तब तो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर, वैसे तो श्लोक ही महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे पास समय बड़ा कम है, इसलिए सत्व भावन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अन्य कोई भी उपाय कर लेते हैं, अन्य कोई भी कार्य करे, यज्ञ करे, तपस्या करे, दान करे, दक्षिणा करे, व्यक्ति का चित पवित्र नहीं हो सकता जितना कृष्ण की भक्ति से व्यक्ति का चित पवित्र होता है। भक्तों, इसी प्रकार की बात प्रभुपाद याद कराते हैं। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजामी तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। बहुत सुंदर, भगवान ऋषभदेव ने ब्रह्मावर्त नामक देश में अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्रो, इदम मनुष्यम देहम, ये मनुष्य का शरीर सुवर और कुकरों की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला। तब इस बात को सुनकर कुछ लोग तपस्या करने लग जाते हैं, बिल्कुल कोरी तपस्या, नंगे पांव चलना, अपने हाथों से अपने बालों को नोच देना। परंतु भगवान ऋषभदेव ने मात्र कोरी तपस्या करने नहीं कहा, उनके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, तपो दिव्यम। हे मेरे पुत्रों, तपस्या करो, लेकिन किसके लिए? दिव्य के लिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं दिव्य का अर्थ होता है भगवान विष्णु, दिव्य का सीधा अर्थ है भगवान विष्णु। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि विष्णु के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो भगवान ऋषभदेव के पुत्र पूछते हैं कि पिताजी, विष्णु के लिए ही क्यों तपस्या करें? तो भगवान ऋषभदेव उत्तर देते हैं, विष्णु के लिए तपस्या यदि करते हैं तो कहते हैं शुद्येत यस्मात। हरे कृष्ण, श्री राधा दास बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। पिताजी बताइए, विष्णु के लिए तपस्या करने से क्या होगा? तो कहते हैं, विष्णु के लिए तपस्या करने से तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध्येत अस्मात्, सत्व शुद्ध्यति, जो शब्द यहां पर भी आया है सत्व भावन, और वहां पर भगवान ऋषभदेव कहते हैं सत्व शुद्ध्येत। सत्व का अर्थ है चित, हृदय। विष्णु के लिए तपस्या करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की भक्ति करने से हमारा चित शुद्ध हो जाता है, और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं के लिए तपस्या करो, पूजा करो, उपासना करो, हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा हिरण्यकश्यपु ने हमारे वैदिक इतिहास में, वैदिक साहित्य में सबसे बड़ी तपस्या की थी। 36,500 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु एक स्थान पर खड़े रहकर तपस्या, बिल्कुल उग्र घोर तपस्या। भागवत में वर्णन है, हिरण्यकश्यपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद एक राट व्यधित सत सतेपे मंदर द्रोणियाम तप परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा शिता अवनी। मंदार पर्वत की तलेटी में खड़े रहकर दोनों भुजा ऊपर करके, दोनों आंखें आकाश के ऊपर करके, और मात्र अपने पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर बिना खाए बिना पिए हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था। और कितनी तपस्या? 36,500 वर्ष तक। आज तक इतनी लंबी तपस्या किसी ने नहीं की। लेकिन ये तपस्या किसके लिए हो रही थी? ब्रह्मा जी के लिए, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। हिरण्याकश्यप ने यह तपस्या ब्रह्मा जी के लिए की। आप सब जानते ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी ने वरदान भी दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी हिरण्याकश्यप का चित्त पवित्र नहीं हुआ, उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। सत्व भावन यह शब्द कहा गया है। हरेर गुणानुवाद, हरि का कृष्ण का गुणगान करने से, कृष्ण का नाम लेने से सत्व भावन चित्त शुद्ध होता है, लेकिन कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना तपस्या इत्यादि करने से हृदय शुद्ध नहीं होता है। जैसे हिरण्याकश्यप का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। रावण शिव जी का भगत था और एक एक करके दसों मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिया। कितना बड़ा यज्ञ किया रावण, दसों मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिया, तब जाकर शिव जी उन पर प्रसन्न हुए और शिव जी ने रावण को वरदान भी दिया, परंतु इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भगवान की पत्नी को हर कर लाया। और कंस दुर्गा देवी का भगत था, लेकिन फिर भी उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। ये सब छोड़िए, सूर्य वंश में राजा मानधाता की 50 कन्या थी, और हमारे भारत में एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिसका नाम था शौभरी ऋषि। शौभरी नाम के ऋषि ही तपस्या कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि संसार में बहुत डिस्टर्बेंस है, इसलिए कहीं ऐसी जगह पर जाकर तपस्या करूं जहां कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। शौभरी ऋषि यमुना नदी में जाकर, यमुना की गहराई में, तलेटी में जाकर कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए यमुना में जाकर तपस्या करने लगे। और कितनी तपस्या की है? कहते हैं 60,000 वर्ष तक शौभरी ऋषि ने तपस्या की, और 60,000 वर्ष के बाद एक दिन शौभरी ऋषि की आंख खुली थी और उन्होंने मछली का मैथुन देख लिया। बस एक चित्र, एक मछली का मैथुन देखा, शौभरी ऋषि का मन पिघल गया। सोचा कि मैं खाली फोकट तपस्या कर रहा हूं, वास्तविक सुख तो ये पशु लोग ले रहे हैं। शौभरी ऋषि के मन में भी विवाह करने की इच्छा हो गई। जिस आदमी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी और उसी व्यक्ति ने उस नदी से बाहर निकलकर मानदाता की 50 कन्या के साथ शादी किया। एक दो कन्या के साथ शादी किया होता तो भी हम समझ सकते थे, लेकिन इस साधु ने 50 कन्या के साथ विवाह किया। क्यों? क्योंकि तपस्या कर रहे थे। इस संसार में कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के भी लिए तपस्या की जाए, दान इत्यादि जो कुछ भी किया जाए, व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है। व्यक्ति शुद्ध हो सकता है एकमात्र भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से। और दूसरी ओर ध्रुव महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज का चित्त शुद्ध नहीं था। ध्रुव महाराज के हृदय में बहुत कामना थी, बहुत इच्छा थी कि मैं राज्य भोगूं, मुझे मेरे पिता उत्तानपाद, उसके पिता मनु, मनु के बाप ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। ध्रुव महाराज के हृदय में कामना थी, जैसे आज भी लोगों के हृदय में कामना होता है, कामनाएं होती हैं कि यहाँ जुहू में एक प्लॉट होना चाहिए, वहां पर प्लॉट होना चाहिए, वहां पर फ्लैट होना चाहिए, वैसे ध्रुव महाराज के हृदय में भी कामना थी। तो उस कामना को लेकर ध्रुव महाराज भगवान विष्णु की भक्ति किए, और विष्णु की भक्ति करने के कारण ध्रुव महाराज का हृदय इतना शुद्ध हो गया, 6 महीने, मात्र 6 महीने में ध्रुव महाराज का हृदय शुद्ध हो गया विष्णु की भक्ति करने से। भगवान विष्णु ने कहा कि ध्रुव जो चाहिए वो मांग लो। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं निकला तो था स्वर्ग, मैं निकला था राज्य के लोभ में, परंतु प्रभु आपकी भक्ति करने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। अब मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना, कोई वासना नहीं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण की भक्ति करता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति जो नहीं करता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। इसलिए जो कृष्ण की भक्ति करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, कृष्ण की भक्ति करने वाले का कभी भी पतन नहीं हो सकता, कहने का तात्पर्य। और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी व्यक्ति कोई भक्ति करता है तो उसका पतन निश्चित। इसलिए भागवत के एकादश खंड में कहा गया, दावन मिलिन वा नेत्रे न स्खलित न पतित। कृष्ण की भक्ति का मार्ग इतना समुचिन है, इतना सरल है कि इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में कोई आंख बंद करके भी दौड़ता है फिर भी न तो वह गिरता है न उसका पतन होता है, वो समय से अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है। और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करे तो उसके जीवन में पतन होता है। ऐसा कहा गया है, जीवन मुक्ता प्रवद्धन्ते क्वचित संसार वासनाम योगिनो न विलिप्यन्ते कर्म भी भगवत परा। भक्ति करने वाले के जीवन में देखा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है धीरे धीरे उनके जीवन में वैराग्य बढ़ते जाता है, परंतु भक्ति को छोड़कर अन्य ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग में जो व्यक्ति लगा है तो देखा गया है कि उनके जीवन में धीरे धीरे संसार को भोगतने की वासना बढ़ती जाती है। मरत मदन मारुदगण इत्यादि बद्रीनाथ नामक धाम में भगवान नर नारायण को स्तुति करते हुए बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं प्रभु इस संसार में जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता है आपकी सेवा करता है उनके जीवन में कभी कभी विघ्न आते हैं, उनके जीवन में भी कभी कभी विघ्न आते हैं, त्वाम सेवताम सुरुकृता बहुवंतराया। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि त्वाम सेवताम हे कृष्ण आपकी सेवा करने वालों के जीवन में सुरुकृते बहुअंतराया, आपकी सेवा करने वालों के जीवन में बहुत अंतराय बहुत विघ्न आते हैं, और वो विघ्न कौन देते हैं तो कहते हैं त्वाम सेवताम सुरुकृते, आपकी सेवा आपकी भक्ति करने वालों के जीवन में है बहुत बहुत विघ्न आते हैं, और वह विघ्न सुरकृते देवता लोग उसको विघ्न देते हैं। कृष्ण की भक्ति करने वालों को देवता विघ्न देते हैं। इसलिए भक्तों कभी कभी भक्त चिंता करते हैं, ये चिंता नहीं करनी चाहिए, जब कृष्ण की भक्ति करने वाले को देवता विघ्न देते हैं तो संसार का मनुष्य विघ्न दे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये देवताओं का कहना है कि हम लोग विघ्न देते हैं, और दूसरी ओर देवताओं की जो भक्ति करते हैं ना उसको कोई विघ्न नहीं आता है। कहते हैं स्वोको विलंग्य परमं व्रजताम पदमते, देवताओं की भक्ति देवताओं की उपासना करने वाले को कोई विघ्न नहीं आता, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने वाले के जीवन में विघ्न आता है। क्यों विघ्न आता है? देवता लोग सोचते हैं कि आज तक ये मनुष्य हमारे पांव के तलवे के नीचे रहता था। देवता स्वर्ग में रहते हैं ना और मनुष्य पृथ्वी लोक में रहते हैं। देवता सोचते हैं आज तक ये मनुष्य हमारे पांव के नीचे रहता था, ये मनुष्य की ये हिम्मत कि कृष्ण की भक्ति करके हमारे सर के ऊपर जाकर बैठ जाए, वैकुंठ में जाकर बैठ जाए, इसलिए देवता उनको विघ्न देते हैं। परंतु बहुत सुंदर उन्होंने बात बताई मदन मारुति इत्यादि ने भगवान को कि हे प्रभु हे कृष्ण यद्यपि देवतागण आपके भक्तों को विघ्न देते हैं लेकिन आपका भक्त थोड़ा भी विचलित नहीं होता, आपका भक्त उस विघ्न के मस्तक के ऊपर अपना पांव रख देता है और संसार में विचरण करता, क्योंकि उस भक्त में आपका नाम लेने से आपका गुणानुवाद करने से इतनी शक्ति आ जाती है कि वह विघ्नों के मस्तक के ऊपर पांव रखकर विचरण करता है, जैसे ध्रुव महाराज ने साक्षात मृत्यु के ऊपर अपना पांव दे दिया। तो भक्तों भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। ब्रह्मा जी भी स्तुति में कहते हैं येन येन अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, इस संसार में जो लोग अपने आप को मुक्त मानते, मुक्त है नहीं लेकिन जो अपने आप को मुक्त मानते हैं और जो लोग कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, वो लोग बहुत ऊंची स्थिति पे पहुंचने के बाद भी उसका पतन होता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में व्यक्ति कोई साधना करता है बहुत छोटी स्थिति में होता है लेकिन फिर भी उसका पतन नहीं होता। अनेक श्लोकों के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कृष्ण भक्त का पतन नहीं। गीता में भी कृष्ण कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बद्रीनाथ में देवतागण कहते हैं और गीता में साक्षात कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई सबको, मेरे भक्त का? लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि पतन होता है। ये आचार्य की बुद्धि भी कहां पहुंचती है। बोले भगवान कहते हैं गीता में मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में कहते हैं कि कृष्ण के भक्त का पतन नहीं, और 33 करोड़ देवी देवता गर्भस्थ स्तुति में कहते हैं कि कृष्ण के भक्त का पतन नहीं, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं मैं कहता हूं पतन होता है। और यदि विश्वास नहीं तो 3 दृष्टांत देते हैं। राजा चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु भगवान शंकरषण कृष्ण की भक्ति करते थे, लेकिन उनका पतन हुआ और मरने के बाद असुर बन गए, वित्रासुर। जीव गोस्वामी का कहना है राजा चित्रकेतु कितने सुंदर राजा थे, मरने के बाद असुर बने, क्या है पतन नहीं है। दूसरा दृष्टांत देते हैं राजा इंद्र द्रुम्न, राजा थे वैराग्य लेकर कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे और कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, लेकिन मरने के बाद हाथी बने गजेंद्र, क्या है पतन नहीं। और तीसरा दृष्टांत देते हैं राजर्षि भरत, पंचम स्कंद। राजर्षि भरत क्या स्थिति थी उनकी, मलवत अपने राज्य को त्याग दिया और पुलाश्रम हरिहर क्षेत्र में जाकर गंडकी नदी के तट पर भजन करने लगे। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनस निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव के स्तर पर पहुंच गए और अजस अविरत अश्रु धारा बहती थी, वा गदगदा, भगवान का नाम जीवा पर आने पर वाणी गदगद हो जाती थी। भगवान के इतने सुंदर राजर्षि भरत भक्त मरने के बाद हिरण बने, क्या इसका पतन नहीं। बहुत सुंदर आचार्य भक्तों की बुद्धि को बोल बहुत कसते हैं, बहुत लेकर जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण आपके भक्त का पतन नहीं होता, देवतागण कहते हैं कृष्ण आपके भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं मैं कहता हूं पतन होता। राजा चित्रकेतु का पतन हुआ, वित्रासुर बने। राजा इंद्रदुम्न का पतन हुआ तो गजेंद्र हाथी बने, और राजर्षि भरत का पतन हुआ तो हिरण बने। पतन तो है, दिख तो रहा है पतन, लेकिन फिर जीव गोस्वामी इसका निराकरण करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, समय हो चुका है इसलिए मैं निराकरण दे देता हूं, नहीं तो इस बुद्धि को बहुत आगे लेकर जाते हैं जीव गोस्वामी। कहते हैं हां ये तीनों का पतन हुआ ये बाहर से दिखाई देता है, और ये सत्य है कि राजा चित्रकेतु के शरीर का पतन हुआ, ये सत्य है राजा इंद्रदुम्न के शरीर का पतन हुआ, और ये सत्य है राजर्षि भरत के शरीर का पतन हुआ। तीनों राजा ही थे, तीनों राजा का पतन हुआ, एक हाथी बना, एक हिरण बना और एक राक्षस बना। जीव गोस्वामी ने कहा कि ये तीनों का, तीनों कृष्ण के भक्त थे और तीनों का पतन हुआ, लेकिन भक्तों ये तीनों के शरीर का पतन हुआ, ये तीनों की भक्ति का पतन नहीं हुआ। जीव गोस्वामी का मेरा कहना, बाहर से दिखता है कि तीनों के शरीर का पतन हुआ, लेकिन तीनों के शरीर का पतन होने के बाद भी उनकी भक्ति हजारों गुना बढ़ गई। अब विचार कीजिए, राजा चित्रकेतु के शरीर में कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी उससे करोड़ों गुना ज्यादा भक्ति वित्रासुर के शरीर में दिखाई दी। इसलिए तो भागवत में वर्णन है ना, चतुर्श्लोकी भागवत, अहम हरे तो पादेक मूलम दासान उदासो भवितास्मि भूय। 4 श्लोक में वित्रासुर ने भगवान की स्तुति की, उस स्तुति में भगवान का विरह, भगवान का प्रेम जो दिखाई दिया वह चित्रकेतु के शरीर में नहीं दिखाई दिया। इसका अर्थ है राजा चित्रकेतु के शरीर का पतन हुआ, उनकी भक्ति का पतन नहीं हुआ, उनकी भक्ति तो और बढ़ गई। दूसरा राजा इंद्रदुम्न, इंद्रदुम्न के शरीर में, राजा के हृदय में जो भक्ति थी उससे कोटि गुना ज्यादा भक्ति गजेंद्र के शरीर में प्रकट हुई और भगवान को स्तुति करने लगे। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र ने बहुत सुंदर भगवान को स्तुति की। तो राजा इंद्रदुम्न के से ज्यादा भक्ति तो गजेंद्र हाथी के शरीर में थी, और राजर्षि भरत भगवान की जितनी भक्ति करते थे उसे कोटि गुना ज्यादा हरण के हृदय में भक्ति थी, और इतना पश्चाताप और इतना विरह हो रहा था कि हरण का शरीर छूट गया, उन्होंने अपना शरीर गंडकी नदी में त्याग दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भक्त का पतन हो रहा है, परंतु भक्तों बाहरिक रूप से भक्त के शरीर का पतन होता है, लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए तो भक्त के शरीर का पतन हुआ, भक्त की भक्ति का पतन नहीं होता। इसलिए यहां पर लिखा गया है सत्व भावना, जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं होता। और मानो किसी के मन में प्रश्न हो कि नहीं, हम तो देखते हैं इस भक्त का पतन हुआ, इस भक्त का पतन हुआ, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है भक्त का पतन हुआ, अंदर से उस भक्त की नम्रता, है, अंदर से उस भक्त का भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। और एक एक सुंदर, यहाँ पर समय तो हो चुका है, एक सुंदर पॉइंट था कि जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह आचार्य ने बहुत मंथन किया है हम टीकाओं में, और ये आप सुनते ही आए हैं, कृष्ण का नाम लेने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, पाप दो प्रकार का है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना, ये दोनों को पाप कहते हैं। और प्रारब्ध और अप्रारब्ध को यदि आसान भाषा में समझ लिया जाए तो जैसे दुकान होती है, दुकान में डिस्प्ले में जो माल रख दिया है वो प्रारब्ध है, और गोडाउन में जो पड़ा है वो अप्रारब्ध है। ये साधारण भाषा में इस प्रकार, ये दोनों पाप के फल है। कृष्ण का नाम लेने वाला ये दोनों पापों से मुक्त हो जाता है। तो भक्त के जीवन में देखा गया है, जो भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, वो अप्रारब्ध से मुक्त हो गए। लेकिन भक्त के जीवन में प्रारब्ध तो फिर भी देखा जाता है। प्रारब्ध माने कभी कभी भक्त को पैरालिसिस हो जाता है, कभी कभी भक्त को डायबिटीज हो जाता है, कभी कभी भक्त के शरीर में रोग आ जाते हैं। आखिर क्यों? यदि भक्ति का फल सारे पापों से मुक्त करना है तो भक्त के शरीर में ये रोग नहीं आने चाहिए, तो क्या वह भक्त भक्ति नहीं कर रहा है? तो उसमें भी आचार्य गण निराकरण देते हुए कहते हैं कि ये सत्य है, भक्ति करने से सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, उस भक्त को कोई रोग नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस शुद्ध भक्त में के शरीर में कुछ रोग आते हैं, कुछ कुछ तकलीफ होती है, तो ये भगवान की स्पेशल इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान जानबूझकर भक्त के शरीर में रोग देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये भक्त इसी जन्म में मेरे पास आ जाए, वैकुंठ में आ जाए। और भक्त भगवान के धाम में कब जाएंगे? जब भगवान की का चिंतन करेंगे और उत्कंठा से भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। तो भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं तो भक्त की नम्रता, भक्त का प्रेम भगवान के प्रति और बढ़ जाता है। इसलिए भगवान विशेष करके भक्तों को दुख देते हैं, नहीं तो भक्तों पांडवों के जीवन में दुख कहां संभव था? जो पांडव पूर्ण पवित्र थे, भगवान ने कहा मम प्राणा ही पांडवा, ये पांडव मेरे प्राण के समान प्रिय, तो पांडवों ने कहां पाप किया था? जिन्होंने तन मन धन से कृष्ण की सेवा की, ऐसे पांडवों के जीवन में दुख आए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये भक्त इसी जन्म में शुद्ध हो जाए और मेरे जीवन, मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाए। तो कुल मिलाकर यह सार है कि अन्य अन्य तपस्या इत्यादि करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, जितना भगवान का नाम लेने से, भगवत कथा सुनने से और भगवान की भक्ति करने से शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। आप सबका धन्यवाद। समय कम था इसलिए संक्षिप्त में ही आपको बताया, फिर भी 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया, ठीक है। प्रश्न। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, शील प्रभुपाद की, हिदाय गौर प्रेमानंद।